الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک کی فضیلت ہم سنیں گے. سرکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج آیت نمبر ہے 108، پارا نمبر 1 اور سورہ بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب یہ آیت کے جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے ذرا وہ سمجھیے گا کہ ایک روایت یہ ہے کہ بعض غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ہم پر اترے، ہم اسے پڑھا کریں، پھر ہمارے لیے نہریں جاری کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یعنی کنڈیشنز ہیں، ایمان لائیں گے لیکن آپ ہم پر جو ہے ایسی کتاب لائیں جو آسمان سے ہم پر اترے اور پھر ہم اسے پڑھیں، ہمارے لیے نہریں جاری کریں. علامہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت ذکر کی کہ کچھ غیر مسلموں نے کہا کہ اگر اللہ پاک خود تشریف لے آئے ہم اسے آنکھوں سے دیکھ لیں پھر کلمہ پڑھیں گے. تیسری کنڈیشن کچھ لوگوں نے لگائی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. یعنی ایمان لانے کی بھی ان کی کنڈیشنز تھیں اور اپنی مرضی کی کنڈیشنز تھیں، اور بڑا عجیب سٹائل تھا. ہیں قرآن آ گیا ہے، نبی پاک معجزات دکھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، مگر ان کی اپنے انداز ہے کنڈیشنز کا. تو اب سورہ بنی اسرائیل پارا نمبر 15 میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو. یعنی الگ الگ کنڈیشنز تھیں. پھر آگے فرمایا، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ. اب ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا نقرؤه، پھر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر کوئی ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں. عجیب عجیب کنڈیشنز تھیں. حضرت موسیٰ سے بھی اسی طرح کے سوال تھے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں بھی کفار نے ویسی کنڈیشنز کرنا شروع کر دی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سمجھیے گا اس آیت کو. اس آیت سے ہمارے لیے ایک بہت زبردست میسج ہے. دوبارہ آیت شروع میں جو پڑھی تھی پڑھتا ہوں، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اے لوگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا تم ان سے ویسے ہی سوال کرو گے جیسے حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے؟ حضرت موسیٰ کو یہود نے کیا کہا تھا، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو نبی پاک سے اس طرح کے سوال کر رہے تھے، انہیں یاد دلایا گیا کہ تم ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو میرے حبیب سے جیسے حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے. اور پھر آگے فرمایا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی اعلان کیا ہے قرآن کا؟ اسلام آ گیا، نبی پاک قرآن لے آئے، معجزات دکھا رہے ہیں. اب دو راستے ہیں، یا تو ان کی بات مان لو، حق کو قبول کرو، اسلام قبول کر لو، या फिर जिद्दी और हठधर्मियों का मुजाहरा करोगे तो फिर तुम कुफर इख्तियार करने वाले हो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुफर से पलटने के लिए भी मुतालबात जो कर रहे हैं उनको गोया तंबी की गई, वॉन किया गया। अब लेकिन एक बड़ा बड़ा अहम सवाल है इस पूरे सिनेरियो में, अब जरा गौर से सुनिएगा। देखिए नबी पाक से तो कुफार ने मौजज़ा तलब किए थे और प्यारे आका ने मौजज़े दिखाए, चांद के दो टुकड़े कर दिए हैं, किसी ने कहा कलमा पढ़े तो प्यारे आका की मुट्ठी में कंकर ने कलमा पढ़ना शुरू किया, मतलब बहुत सारे मौजज़ा। तो जब नबी पाक से लोगों ने मौजज़ात तलब किए, प्यारे आका ने मौजज़ात दिखाए, तो यहाँ अगर कोई सवाल कर रहा है कि जनाब गोहे सफ़ा को जो है वो सोने का बना दे, तो इसको कुफर क्यों करार दिया गया, इसको इसको मना क्यों किया गया? ये दो बड़ी कमाल की बातें हैं, ये सवाल जहन में आ सकता है। देखिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला जब वो ईमान लाए ना, तो उन्होंने भी नबी पाक से मौजज़ा तलब किया था, प्यारे आका ने उनको गैब की खबर दी, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक आराबी आया नबी पाक के पास और आकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मौजज़ा दिखाइए, मुझे पता चले कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर मैं सामने मौजूद दरख्त की टहनी को बुलाऊँ और वो आ जाए तो मुझे नबी मान लोगे? वो कहता है हुज़ूर मान लूँगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने टहनी को बुलाया, दरख्त को नहीं उसकी टहनी को बुलाया, टहनी अपनी जगह से खुद ही कटी, उछलती हुई नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो गई। नबी पाक ने फरमाया वापस चली जा, वो वापस चली गई और दोबारा उसी तरह जाकर जुड़ गई और वह आराबी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो ऐसे तो बहुत सारे वाक़े आते हैं कि प्यारे आका से मौजज़ात तलब किए गए, नबी पाक ने मौजज़ात दिखाए, लोग ईमान ले आए, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ कुफार अगर ऐसे सवाल कर रहे हैं तो इनको क्यों मना किया गया? तो याद रखिए कि ये बात, इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, बताया इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं बहुत सीखने की बात है। ये कुफार जो मौजज़ा तलब कर रहे हैं ये बतौर दलील नहीं मांग रहे, ये बतौर ज़िद और हट धर्मी के मान रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हट धर्मी वाला है, ये ज़िद वाला, ये मानने के लिए नहीं कि हुज़ूर दिखा दे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा, यहाँ चैलेंज करना है, यहाँ टेस्ट माद अल्लाह करना है। बात जो ये कह रहे हैं ये कुफर नहीं थी, इनका लहजा गुस्ताखाना था, इनका स्टाइल गुस्ताखाना था, ये तरीके हट धर्मी वाले थे जो कुफर का हुक्म लगाया गया। तो पता चला इनकी डिमांड पर कुफर का हुक्म नहीं है, इनके स्टाइल पर, इनके लहजे पर, इनका गुस्ताखाना जो रवैया है उस पर कुफर का हुक्म लगाया गया। कुरान क्या कहता है, वमन यतबद्दल कुफर बिल ईमान फकत दल्ल सवा सबील, और जो ईमान के बदले कुफर इख्तियार करे वो सीधे रास्ते से भटक गया। गोया फरमाया क्या जा रहा है, जो तू मानने की नीयत से आएगा तो मेरे आका चांद को दो टुकड़े करके भी दिखा देंगे, अगर गुस्ताखाना लहजे अपनाओगे तो रसूल दीशान अलैहिस्सलाम के हुजूर जिद्द व हठधर्मी करोगे तो ये लहजे कबूल नहीं होंगे, ये कुफरिया अंदाज है, ये कुफर का तरीका है, सीधी राह से भटके हुए लोग ऐसा करते हैं। तो पता चला कि बाज़ औकात लफ्ज ठीक हो, सच्चे हो, मगर लहजा गुस्ताखाना हो जाए उससे भी गुस्ताखी हो जाया करती है। जब बात अल्लाह की करनी है ना, अल्लाह के रसूल की करनी है, अंबिया की करनी है, अहले बैत की करनी है, सहाबा की करनी है, अल्लाह के प्यारों की करनी है, तो लहजा भी नरम रखना है, लहजा भी अदब वाला रखना है। हाँ बाज़ औक़ात बंदा कहता है बात तो सही कर रहा है, सिर्फ बात नहीं लहजा कैसा था। हैं, कोई अपने वालिद को कहे ऐ मेरी माँ के शोहर इधर आ, तो बात तो ठीक है, माँ का शोहर ही है वालिद, आप क्या कहेंगे इतना बेअदब है? वो कहेगा कहाँ बेअदब हूँ भाई, माँ का शोहर ही तो है। नहीं, वालिद साहब कहेंगे, अब्बू जान कहेंगे। अच्छा ये बातें वालिद के लिए समझ आ रही हैं, सबको समझ आ रही हैं, तो जो सारी कायनात के आका हैं, अल्लाह के हबीब हैं, उनकी बारगाह में बात का अंदाज़ क्या होगा, उनके उनकी आल के बारे में क्या अंदाज़ होगा, हैं उनके सहाबा के बारे में, गौर करने वाली बात। तो ये कुरान हमें गोया अदब सिखा रहा है कि मेरे महबूब से ऐसे सवाल ना करो, ऐसे सवाल करने वाले, ये अंदाज़ इख्तियार करने वाले तो कुफरिया अंदाज है। कुरान गोया सुभान अल्लाह हमें क्या खूबसूरत अदब की तालीम दे रहा है। अब ज़रा इसको समझिएगा, अल्लाह के बहुत बड़े अजीम नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा की बड़ी शान है, कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी नबी का है ना तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उलुल अज़म रसूलों में से आते हैं। आपने अल्लाह से एक बार बड़ी प्यारे अंदाज में रिक्वेस्ट की, ए रब मुझे अपना जलवा दिखा दे ताकि तेरा दीदार कर लूँ। तमन्ना क्या है, अल्लाह को देखना है। इरशाद क्या हुआ, लन तरानी, तू मुझे हरगिज़ ना देख सकेगा, मगर फिर भी अपनी एक तजल्ली दिखाई रब ने, कोहे तूर पर अपनी तजल्ली नाजिल की, ठीक है, रिक्वेस्ट हुई, कुछ ना कुछ अता किया गया। ऐसा ही एक मुतालबा किया था हजरत मूसा की कौम ने, कुरान उसका भी जिक्र करता है, या मूसा लन नुमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरा, ए मूसा हरगिज तुम्हारा यकीन ना करेंगे जब तक ऐलानिया खुदा को ना देख लें। मुतालबा तो ये भी यही था, अल्लाह को ही देखना था ना, हजरत मूसा ने भी देखना था, है उधर तजल्ली दिखाई जा रही है, और यहां क्या हुआ, कुरान जवाब देता है, अंदाज यहां डिमांड क्या थी, अल्लाह तेरा दीदार कर रहे हैं, नहीं हम देखेंगे तो ईमान लाएंगे वरना ईमान ही नहीं लाएंगे, स्टाइल चेंज है ना, है अंदाज चेंज है, चैलेंजिंग है, गुस्ताखाना है। क्या उनको भी जलवा दिखाया गया, क्या उन्हें भी तजल्ली दिखाई गई? कुरान कहता है उनका क्या हाल हुआ, फअखज़तकुमुस्सा'इकतु व अंतुम तंज़ुरून, तो तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हें कड़क ने पकड़ लिया, यानी उन पर अजाब नाजिल किया, उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि उनको तबाह कर दिया गया। मुतालबा दीदार का था मगर अजाब आया, बात समझ आ रही है, अंदाज गुस्ताखाना था, अंदाज चैलेंजिंग था, अंदाज कुछ और था, बात बाज़ का ठीक करते करते लोग अंदाज गुस्ताखाना इख्तियार कर लेते हैं। ये तब्दीली लानी है हमें जब भी इस तरह की बात करनी है अल्लाह रसूल और अल्लाह के प्यारों की, अदब के साथ। और अदब याद रखिएगा, ये अदब वालों की तरफ से मिलता है, आप बा अदब लोगों के साथ रहेंगे ना तो फिर बा अदब आप बनेंगे, आप बैठते ही उनके साथ हैं जो जारहाना गुफ्तगू करते हैं, बेअदबी वाली बात करते हैं, आप चेक करें कि आपने बयान भी उसका सुनना है, आपने बैठना भी उसकी सोहबत में है, कि जब वो अल्लाह का नाम लेता है तो उसका अंदाज क्या होता है, जब वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम का नाम लेता है तो उसका स्टाइल क्या होता है, अदब वाला, प्यार वाला, सहाबा अहले बैत औलिया का जिक्र अदब के साथ करता है या माद अल्लाह जारहाना अंदाज है, वो खुद तो डूबेगा हमें भी डुबा देगा, हमें क्या करना है उसके साथ। ये कुरान के जरिए मैं आपको गोया ये पूरी बात अब समझा रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक बात याद रखिएगा, इल्म नफ्सियात में एक 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 टर्मिनोलॉजी होती है, आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सनैलिटी। कुछ लोग होते हैं जिनका मिजाज ही जो ना झगड़ालू होता है, उसका हर बात में उसका स्टाइल ही झगड़ा वाला होता है, ये बाकायदा एक पर्सनैलिटी की कैटेगरी होती है। हक और सच बात पर उनके लिए उनके सामने जितने भी दलाइल कायम कर लेना, ये बस कीड़े ही निकालते रहेंगे, किसी सूरत मानना ही नहीं है, बस शर्तें लगाते रहेंगे, यार बात तो तुम ठीक कर रहे हो मगर ये कर लो ना फिर मानूंगा, ये करोगे तो फिर मानूंगा, अच्छा इसको बदल लो फिर मानूंगा, जो आप लेकर गए वो नहीं मानना, वो अंदाज ही ये होता है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सनैलिटी, झगड़ालू मिजाज बंदा। गैर मुस्लिमों की भी यही तबीयत थी, अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी की तबीयत है, मानने में मुश्किल लगता है, एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है, बदलें अपनी तबीयत को। गैर मुस्लिमों का अंदाज क्या था, शर्तें लगाते थे, कुरान में उसका भी जिक्र है, इति बी कुरान इन गैरी हादा, इसके अलावा कोई और कुरान ले आओ, यानी चलो बात ठीक है मान लेते हैं आप बात सही कर रहे हैं, मगर ऐसा करो इसके अलावा कोई और कुरान लाए फिर आपकी बात माने, खामा खा, यानी कोई ऐसी बात करनी है कि पहले मेरी मानो फिर तुम्हारी मानूंगा, हक नहीं मानना, सच नहीं मानना, ऑलवेज आर्ग्यूमेंट। एक जगह कहा अबद्दिल हो, ऐसे तब्दील कर दो, कुरान तुम लाए हो ना इसको थोड़ा चेंज कर दो फिर मानेंगे, माद अल्लाह नबी पाक से इस तरह के आर्ग्यूमेंट किया करते थे। अल्लाह अकबर, ये कैसी बदबख्ती है, कुरान आ चुका है, दलायल कायम कर दिए, हक वाजे हो गया, अब मान लो, खामा खा बहाने लगाना, ये कहाँ की अकलमंदी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उल्टे पुल्टे मुतालबे करते रहते, अल्लाह पाक ने फरमाया अम तुरी दून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कबल, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने रसूल से वैसे ही सवाल करो जैसे पहले मूसा से किए गए। तो बार बार ये इस आयत में समझ क्या आ रहा है कि जैसे नबी पाक फरमा रहे मान लो, लब्बैक कहो, एक्सेप्ट करो, फॉलो करो, ये मेरे हबीब से क्वेश्चंस मत करो जैसे हजरत मूसा से किए थे। और यही इस्लाम लाने के बाद मेरी और आपकी जिम्मेदारी, हम ईमान वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी प्यारी बात हम अमीर अहले सुन्नत से सुनते हैं, असी मनन वाले हैं, सोचने वाले नहीं हैं। हाँ, आजकल क्या प्रॉब्लम हो गई है, आजकल बहुत कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हो गए ना, तो अब कहते हैं यार ये कुरान का हुक्म क्यों है, अल्लाह ने ये हुक्म क्यों नाजिल किया, हदीस में ये ऑर्डर क्यों आया, इसकी लॉजिक बताएं। हैं आज लोग कुरान के अंदर लॉजिक अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से अगर शरीयत के अहकाम मिले हैं उस पर लॉजिक पूछ रहे हैं। हमारा काम लॉजिक ढूंढना नहीं है, हमारा काम मानना है। ये कुफार का तरीका था, यूं कर दो तो मानेंगे, यूं कर दो तो मानेंगे। मुझे किसी ने कहा जनाब यार ये कुरान के जो अहकाम है इसकी लॉजिक, मैंने कहा पहले एक बात बताएं, हम ईमान लाए हैं, अल्लाह को देखा है हम में से कोई जिसकी अल्लाह से मुलाकात हुई है, जब बे देखे रब को मान लिया, हमने तो जिब्रील से मुलाकात नहीं की, हमारा ईमान यह है कि जिब्रील अमीन कुरान लेकर आए, हमने कुरान उनको लाते हुए नहीं देखा, हमने नबी पाक से भी मुलाकात नहीं की है। हम मानते हैं अल्लाह एक है, हैं कुरान अल्लाह की किताब है, जिब्रील अमीन वो कुरान लाए और किस पर नाजिल हुआ, हमारे आका पर नाजिल हुआ, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हमने जन्नत नहीं देखी, हम जन्नत पर ईमान लाए, हमने दोजख नहीं देखी, हम जहन्नम को मानते हैं, हमने कयामत देखी नहीं, हमारा ईमान है कयामत पर, मरने के बाद उठाया जाएगा, ये हमारा ईमान है, हमें हिसाब देना पड़ेगा, ये हमारा ईमान है। ये सारी बातें गैब की हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी गैब की बातें मान ली तो अब चंद अहकाम पर लॉजिक क्यों ढूंढने निकले हो? ये शैतान का वार है, इंसान को उस बहस में उलझाता है कि वो परेशान हो जाए कि यार अल्लाह ने ये क्यों फरमाया था। क्योंकि जब किसी का ऑर्डर नहीं मानेगा तो फिर आगे जाके उस पर्सनैलिटी को भी नहीं मानेगा। ये इब्तिदा होती है कि आपको पहले शरीयत के कुछ अहकाम में कन्फ्यूज करता है शैतान कि यार ये औरत को एक हिस्सा क्यों है विरसे में, मर्द को दो क्यों मिलते हैं, ये तलाक का हक मर्द के पास क्यों है। अब ये वो सवालात क्रिएट किए जा रहे हैं कि इसकी लॉजिक क्या है, शरीयत ने क्योंकि माद अल्लाह मुसलमान कहलाने वाले बाज़ोकात इस्लाम के कुछ आकाम को कहते हैं जुल्म हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी और आपकी समझ क्या है, फिर अल्लाह को कैसे मान लिया, अल्लाह समझ आ गया तुम्हें? गौर करें, हम गैब पर ईमान लाए हैं, हमें समझ आए ना आए, हमारा यकीन है कि अल्लाह एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, किसी से पैदा नहीं हुआ है। ये ईमान की पुख्तगी है ना। जब इतना कुछ मान लिया तो अब शरीयत के अहकाम में ये क्वेश्चन करना, कंडीशंस लगाना, ये कुफार का तरीका, और फिर उसमें लहजा भी गुस्ताखाना, वो और बात जो है वो खतरनाक हो जाती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लाम भाई, अब मैं कुछ वाकयात आपको बताता हूँ। देखें, हमसे ज्यादा अकलमंद सहाबाए किराम थे, हमसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह विजनरी वो थे, क्योंकि सोबत किसकी मिली थी? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की। मगर लुक एट द वे ऑफ ओबीडियंसी, उनका फरमाबरदारी वाला अंदाज कैसा था। याद रखिए, शराब पहले हराम नहीं थी, इस्लाम के इब्तदाई सालों में शराब हलाल थी और लोग बड़े शौक से शराब पिया करते थे, मगर अब अल्लाह पाक ने शराब को हराम करार दिया। अब क्या कुरान में नाजिल हुआ, या अय्युहल्लदीन आमनु इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान क्या कहता है, ये अब आज के दौर के लोग भी जरा गौर से ये आयत कुरान की समझ लें। ईमान वालों को डायरेक्ट अल्लाह ने फरमाया है, ये उन आयतों में से आयत है जिसमें डायरेक्टली अल्लाह ने हमसे बात की है, डायरेक्टली मुझसे और आपसे क्या फरमाया है, ईमान वालों शराब और जुआ और बुत और किस्मत मालूम करने के तीर नापाक शैतानी काम ही हैं, तो इनसे बचते रहो ताकि तुम फला पाओ। याद रहे, ये आयत नाजिल होने से पहले शराब हलाल थी, हराम नहीं थी। अब क्या हुआ, एक घर में कुछ सहाबा बैठे थे और शराब चल रही थी क्योंकि हलाल थी। अब कुरान की आयत उन तक नहीं पहुंची, गली में ऐलान हुआ। जैसे ही हुकुम आता था ना तो साहबा ऐलान करते थे, लोगों ये ऑर्डर आ गया है, ये हुकुम आ गया अल्लाह की तरफ से, ऐलान हुआ बेशक शराब हराम कर दी गई है, बस ये ऐलान सुना उन्होंने, हाथों में शराब के बर्तन हैं। उसी वक्त वो सारी की सारी शराब जो है, अब अगला घूंट नहीं पिया, शराब हराम हालांकि फेवरेट ड्रिंक है, उसको जरा गलियों में बहा दिया, बर्तन तोड़ दिए शराब के। अल्लाह अकबर, हम जैसा आदमी आज के दौर में होता, या चेक तो करो खबर ठीक है कि नहीं, ये क्यों नाजिल हुआ है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कल तक तो हलाल थी आज कैसे हराम हो गई, अभी तो लोग बहसे कर रहे हैं ना। नहीं, मनन वाले सोचण वाले नहीं, साहबा इकराम ने बर्तन भी तोड़ दिए, मक्के की गलियों में शराब बहा दी, उसके बाद हाथ भी नहीं लगाया। ये वो फरमाबरदारी थी कि नबी पाक के पास जाएंगे, उसकी लॉजिक पूछेंगे, उसका सवाल पूछेंगे, अल्लाह ने क्यों हराम करार दिया। नहीं, जब पता चल गया रब ने मना फरमा दिया है, राइट अवे डिसीशन लिया। अच्छा मुझे बताओ, ये मना तो हमारे लिए भी है ना, मगर आज हालांकि उनके लिए पहले हलाल था फिर हराम हुआ, उनके लिए मुश्किल था ये काम करना, हम तो जब से पैदा हुए पता है जब से होश संभाला शराब हराम है, हम क्यों पड़ गए शराब में? क्या आज हम नहीं सुनते कि मुसलमान नौजवान बच्चे बच्चियां और कई लोग हैं जो शराब पीते हैं? मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या ये हुक्म सिर्फ सहाबा के लिए था? जुए में किस तरह हमारी कौम गर्क हो गई है, अब तो मोबाइल एप्लीकेशन पर सुना है बाप बेटा साथ बैठे हो, बाप को पता ही नहीं चलता बेटा जुआ खेल रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, हम समझ रहे हैं मैसेज कर रहा है, वो तो किसी एप्लीकेशन पर पैसे लगा बैठा है। इस कदर जुआ आम हो गया, हालांकि कुरान कहता है, क्या फरमाया, कि ये शैतानी शैतानी काम है, बर्बाद कर देंगे हमें। तो साहबा इकराम ने लॉजिक नहीं पूछी, राइट अवे डिसीशन लिया। और ये एक बार नहीं हुआ, कितना मशहूर वाक्य है तहवील किबला का। अल्लाह आपको और मुझे बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। मस्जिद किबलतैन जाएंगे ना आप, जो गए उनको पता है वाय मस्जिद किबलतैन, कि वहाँ पर किबले की तब्दीली हुई थी, दो किबलों वाली मस्जिद। ठीक है, अब माजरा क्या था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मक्के से मदीने पहुँचे थे तो मदीने के लोग जो है वो उस वक्त मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, तो मदीने के जो कुफार थे वो टॉन्ट करते थे, ताना देते थे नबी पाक को कि आप दीन तो अपना लाएँ, किबला तो हमारा यूज़ कर रहे हैं, हैं। तो अब नबी पाक का दिल चाहता था कि मुसलमानों का किबला जो है वो काबा हो जाए। अब प्यारे आका बार बार आसमान की तरफ नज़र उठा रहे हैं कि काश अच्छा अल्लाह का हुक्म आ जाए। नबी पाक अल्लाह के हुक्म के कैसी फरमा बरदारी कर रहे हैं, दिल चाह रहा है कि काबे की तरफ सजदा करें, मगर रब का हुक्म आएगा फिर। ये भी तरबियत है मेरी और आपकी, क्या उम्मत के रहनुमा हैं, दिल चाह रहा है उस पर अमल नहीं हो रहा, रब फरमाएगा तो अमल करना है। आज हमारा दो दिल चाहता है हम कर डालते हैं, चलो यार कर लो कोई बात नहीं। अल्लाह के हबीब का ये अमल भी बता रहा है कि जी चाह रहा है, लोग सता रहे हैं, मगर जब तक रब का हुक्म है तो बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़नी है। मगर अल्लाह की शान देखो, अल्लाह का अपने हबीब से प्यार देखो कि प्यारे हबीब की जो रज़ा है वो अल्लाह को कितनी महबूब है। चार रकात वाली नमाज है, दो रकात मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ ली है, प्यारे आका इमामत कर रहे हैं, सहाबा सफ़े बनाए खड़े हैं, और सुबहान अल्लाह दौरान नमाज वही नाजिल होती है। अब ज़रा उस कुरान की आयत का लुत्फ तो लीजिए, इस आयत का मतलब तो समझिए। अल्लाह फरमा रहा है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। ए महबूब, तुम्हारी इस अदा को देख रहे हैं जो तुम बार बार आसमान की तरफ नजर उठा रहे हो कि अभी हुक्म आ जाए, अभी हुक्म आ जाए। आप अंदाज देखें, अरे अगर ये नात नहीं है तो नात क्या है कि कुरान में रब अपने हबीब की शान कैसे बयान फरमा रहा है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदौहा, तो हम जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। यहां उलमा ने एक और बहस की है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदौहा, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि ए महबूब फेर दो किबले की तरफ जहां मेरी रिजा है, ए महबूब हम उधर फेरेंगे जिसमें तुम्हारी रिजा है। जबी तो आला हजरत लिखते हैं कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सारी दुनिया जो किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ती है ना, मुंह मेरा काबे की तरफ, याद करना ये मुंह काबे की तरफ हुआ इसलिए कि इसमें नबी पाक की रिजा थी। आप चाहते थे ये काबा बन जाए, अल्लाह ने हबीब पाक की रिजा के लिए मुसलमानों का किबला जो है वो काबा बना दिया। मगर एक बड़ा कमाल का सवाल है, ये कब हुआ था? दो रकात के बाद, बिटवीन द नमाज, ड्यूरिंग द नमाज। और नबी पाक ने, अच्छा ये चेंज कितना बड़ा था, अब इसको मैं समझाता हूं आपको। अगर मिसाल के तौर पर मैं किबला रुख बैठा हुआ हूं और मैं नमाज के दौरान 5-10 डिग्री चेंज हो जाऊं, इट्स नॉट बिग डील, पीछे वालों को भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा। ऐसा नहीं था, ये 180 डिग्री का टर्न अबाउट था। यानी अगर काबा इधर था तो बैतुल मुकद्दस इधर था, यानी नबी पाक नमाज के दौरान अबाउट टर्न हुए हैं। अल्लाहु अकबर, सहाबा इकराम ने पूछा नहीं कि हुजूर ये क्या हो रहा है, नमाज में तो बात भी नहीं हो सकती ना, अनाउंस भी नहीं हो सकता। सबको पता था महबूब ने रुख बदला है तो हमने भी रुख बदलना है, हमने इताअत करनी है, हमने सवाल नहीं करना, हमने क्वेश्चन नहीं करना। सुभान अल्लाह, सारे सहाबा ने रुख बदल लिया, नबी पाक ने आगे आकर फिर दो रकअत इमामत जो है वो काबे की तरफ की। मस्जिद किबलतैन आज भी वो कहानी सुना रही है। जाइए मदीना मुनव्वरा में, एक मेहराब इधर है, दूसरी मेहराब उसके बिल्कुल अपोजिट है, और बताया जाता है कि इधर नमाज हो रही थी और दौरान नमाज ये अबाउट टर्न हुआ। अब बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, मुझे आज मस्जिद में असर की नमाज का वक्त बदलना हो, ऐलान करना पड़ता है कि जनाब अब असर की नमाज 15 मिनट के बाद होगी, बगैर अनाउंसमेंट किए कोई जमात का वक्त बदल दे, नमाजी नाराज हो जाते हैं कि जनाब ये क्या बात हुई, आपको पहले बताना चाहिए था, हमारी जमात चली गई है। एक जमात का वक्त बदलने के लिए आपको ऐलान करना पड़ता है। सवाल लॉजिकली ये है, किबले का रुख बदलना था, अरे भाई जोहर से पहले ऐलान हो जाता, जोहर के बाद ऐलान हो जाता, असर की नमाज में किबला चेंज होता, ये दौरान नमाज किबला क्यों चेंज हुआ? कोई ऐलान नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सिर्फ नबी पाक को मालूम है कि किबला बदला है, सहाबा पर तो वही नहीं आई थी, अल्लाह के हबीब ने रुख बदला है। ये रहती दुनिया को मैसेज देना था कि मेरे नबी के सहाबा फरमा बरदारी कैसे करते हैं,
फॉलो कैसे करते हैं, सरकार की बात को कैसे मानते हैं, इस्लाम के हुक्म पर चू चरा नहीं, लॉजिक तलाश नहीं करते, वो लब्बैक कहकर उस पर अमल करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। अब सवाल हम सबसे है, वही कुरान की बात जो हमने शुरू में सीखी थी कि जब शरीयत का हुक्म आ जाए, अल्लाह रसूल की बात आ जाए, तो वहां लॉजिक्स, वहां क्वेश्चन, वहां आर्ग्यूमेंट नहीं होते, वहां बात को मानना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। सुभान अल्लाह, सहाबा की वो फरमा बरदारी हमें बता रही है, अरे वो किबला चेंज होने पर सवाल नहीं कर रहे, और आज का मुसलमान इस्लामी अहकाम पर क्वेश्चन और आर्ग्यूमेंट कर रहा है। ये सीखिए सहाबाए किराम से, फरमा बरदारी किसको कहते हैं। और ये एक दो बार नहीं, मैंने दो वाकयात सुना दिए ना, आओ अब एक तीसरा वाकया सुनिएगा। सुलह हुदैबिया, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है। अब ये सुलह हुदैबिया भी बड़ा यूनिक मामला था, ये तो सहाबाए किराम का एक ऐसा इम्तिहान था। ये 6 हिजरी में हुआ था, मक्के से मदीने सहाबा जा चुके थे, और इनमें अक्सर वो थे जो मक्के में रहने वाले थे। खुद नबी पाक की 53 ईयर्स की लाइफ जो है वो मक्के में गुजरी है। आप सोचो, हम एक बार काबा देख लें, हर साल जाने को जी चाहता है, साल में कई बार जाने को जी चाहता है, ऐसा लगता है मक्के मदीने में दिल वहीं छोड़ आए हैं। वो शायर लिखते हैं ना, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जहाँ वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। वो खुद आ जाता है मगर दिल मक्के मदीने में छोड़ आता है, जिसका दिल जिंदा होता है। कुछ लोग बदकिस्मती से ऐसे होते हैं कि मक्के मदीने जाकर वहां से भागने की बातें कर रहे होते हैं, आकर कहते हैं अब नहीं जाऊंगा भाई, बहुत रश होता है, है? माद अल्लाह, उनको वहां जाने में तकलीफ महसूस हो रही होती है। उन बदनसीबों को अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए, वरना खुदा की कसम मक्का मदीना तो वो जगह है कि बंदा जितनी बार जाए जी भरता नहीं, बल्कि वहीं रहने को, वहीं मरने को जी चाहता है। उससे अच्छी जगह कौन सी है। लेकिन अब जिन्होंने जिंदगी मक्के में गुजारी, उनको मक्के से निकाल दिया गया, बड़ी तकलीफ के साथ मदीने गए थे। 1400 सहाबा उमरा करने आए, मगर उमरा नहीं करने दिया गया। हुदैबिया मक्के के करीब है, उनको इंटरसेप्ट किया गया, बड़ी शराइत तय हुई, बड़ी कोशिश हुई कि भाई अहराम भी पहन लिया है, अब तो मक्के जाने दिया जाए, मगर नहीं जाने दिया गया। नबी पाक ने भी अहराम उतारा, सहाबा ने भी अहराम उतारा, जो भी कुर्बानी वगैरह करनी थी ये वापस गए। बड़ा बड़ा अजीब वाकया है, मगर ये अल्लाह की शान है कि उसके बाद मुसलमानों को कैसे फतह नसीब हुई। मगर उसमें एक और वाकया भी हुआ था जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सहाबा में से बहुत बड़ी तादाद सहाबा की वो थी जिनको शिकार की आदत थी, हैं, वो रोज़ शिकार करते थे, ज़ाहिर शिकार करके खाना खाते थे, अपने रोज़मर्रा के मामला देखते थे। अहराम की हालत में शिकार मना है, आप शिकार नहीं कर सकते। अच्छा, अहराम पहना है, वो उमरा भी नहीं करने दे रहे कि उमरा हो जाए तो अहराम उतर जाए। अब नेगोशिएशन चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, कई कई दिन गुजर रहे हैं, सहाबा हुदैबिया में अहराम की हालत में हैं, और अल्लाह की शान देखें कि जानवर जो है वो उनके करीब कर दिए गए। टेस्ट कैसे लिया गया, परिंदे सर पर मुंडला रहे हैं, जो भी शिकार के जानवर वो खैमों के करीब आके खड़े हो गए, बल्कि यहाँ तक किताबों में कि खैमों में भी दाखिल हो गए। सहाबा कहते हैं उस दिन बगैर हथियार के शिकार करना पॉसिबल था, हाथ से पकड़ सकते थे, यूं जानवर हमारे पास घूम रहे हैं, यूं परिंदे करीब आ रहे हैं। ये क्या था, ये इम्तिहान था, ये टेस्ट था। अल्लाह का हुक्म था कि शिकार नहीं करना, और शिकार करीब कर दिया गया, मगर उन सहाबा ने इताअत का वो अजीम मुजाहरा किया कि ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी ने भी शिकार की तरफ हाथ भी नहीं उठाया, हाथ तो उठाना दूर की बात, नजर भर कर नहीं देखा, क्योंकि इताअत ये थी, अल्लाह रसूल का फरमान ये था। अच्छा, ये मैं बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं, और कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि जब आप शरीयत पर अमल करते हैं ना, तो हराम करीब आता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। हाँ, कोई बंदा कहे मैंने बदकारी नहीं करनी है, तो उसे माज़ अल्लाह बाज़ औक़ात बेहया औरतें अप्रोच करती हैं, उसको मौका मिल रहा होता है हराम काम करने का। अब उसका ये टेस्ट है कि तुम्हें हराम से बचना है और हराम तुम्हारे सामने, कोई नियत कर लेना, ये सरकारी अफसर बैठे होंगे या कोई इदारे के लोग बैठे होंगे कि भाई मैंने आज से रिश्वत का काम नहीं करना, मैंने आज से हराम नहीं करना। अब हराम बढ़ बढ़कर उसके सामने आएगा, ऑफर्स आएंगी उसको, ये टेस्ट है आपका। हाँ, ये आपका इम्तिहान लिया जा रहा है कि आपने नियत कर ली है मैंने गुनाह नहीं करना, आपने नियत कर ली मैंने हराम नहीं करना, मगर हराम बढ़कर वो परिंदे आपके सर पर घूम रहे होंगे। तो सुलह हुदैबिया को याद कर लेना कि अल्लाह मैं इस इम्तिहान में साबित कदम रहूंगा, यही तो टेस्ट है ना। किसी को गुनाह का मौका ही ना मिला और वो कहे मैंने गुनाह किया ही नहीं है। कमाल यह है कि जिस पर गुनाह के मौके आए और उसने अपने आप को बचाया। हाँ, ये जरूर उलमा कहते हैं कि ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए, ऐसे शहर में, ऐसे मुल्क में, ऐसी सोसाइटी में अपने आप को नहीं रखना चाहिए कि जहां हर तरफ गुनाह फैले, क्योंकि हम कमजोर लोग हैं, हम बह सकते हैं शैतान के वारों में। लेकिन
اگر کسی پر گناہ کرنا آسان کر دیا جائے اور پھر بھی وہ گناہ سے بچے تو سبحان اللہ، یہ ہے وہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ۔ کہ بعض اوقات کاروبار میں بڑا بڑا نفع نظر آتا ہے، بڑی ڈیل نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا ہے، تھوڑی تو جناب ڈنڈی مار رہی ہے، تھوڑی تو ملاوٹ کرنی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بہت پیسے مل جائیں گے۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہی وہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں شیطان کو فالو کرنے والا نہیں۔ صحابہ اکرام کے سامنے شکار موجود تھا مگر ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ اللہ رسول نے منع کیا تھا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آج اس پورے قرآنی واقعے سے اور قرآنی آیت سے سیکھنے کو جو مل رہا ہے کہ پہلی بات، جب بھی قرآن و حدیث کا، شریعت کا حکم آ جائے اس میں آرگیومنٹ نہیں کرنا ہے، اس میں جناب شرطیں نہیں لگانی ہیں، مان لیں، قبول کریں، ایکسیپٹ کریں اور عمل کریں، اور اپنے لہجوں میں نرمی لائیں۔ گستاخانہ رویے جو ہیں یہ ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، خاص طور پر جب اللہ کی بارگاہ میں بات ہوگی، رسول پاک کی بارگاہ میں بات ہوگی، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اللہ والوں کے بارے میں بات ہوگی تو بڑی نرمی سے، بڑی شائستہ دو چار بار سوچ کر بات کرنی ہوگی کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب آخری بات سن لیں کہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ نبی پاک نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کی طرف جلدی بڑھنے والا شخص کون ہوگا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے، جلدی بڑھنے والا شخص کون ہوگا؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ لوگ کہ جب حق دیے جائیں تو اسے قبول کر لیں۔ حق ملے، آپ کو کوئی دلیل کے ذریعے بتائے کہ جناب یہ حق ہے، ایکسیپٹ کر لیں، اپنی غلطی بھی ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں، خواہ مخواہ کی بس وہ میں نہ مانوں والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن و حدیث میں، شریعت میں تو فوراً قبول کریں۔ میرات المناجی میں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جب کوئی انہیں حق بات سنائے تو اسے قبول کر لیں اور سنانے والے کا احسان مانیں، اسے قبول کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں جلدی پہنچ جائیں گے۔ اب نبی پاک ایک پیاری سی دعا سن لو، اللہ کرے یہ دعا ہمارا حصہ بن جائے۔ آقا دعا فرماتے، اللہم ارن الحق حقا ورزقنی اتباعہ وارن الباطل باطلا ورزقنی اجتنابہ۔ اے اللہ، مجھے حق کو حق دیکھنے اور اس کی پیروی کی توفیق نصیب فرما، باطل کو باطل ہی دیکھنے اور اس سے بچنا نصیب فرما۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا اس دعا کا صدقہ عطا فرما، حق کو حق دیکھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرما، اور باطل کو باطل دیکھ کر اس سے بچنا نصیب فرما۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔